संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 24 अगस्त 2018 के इस बुलेटिन में आप सुन सकेंगे, बांग्लादेश पहुंचे लाखों रोहिंग्या बच्चों के भविष्य पर अंधेरा छा जाने का खतरा, तंबाकू सेवन से लोगों की जान बचाने के लिए नई मुहिम चलाने की पुकार, मध्यपुर में जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में राजनीति को बाधा नहीं बनने देने का आह्वान, सिविल सोसाइटी के खास सम्मेलन में बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने पर जोर, और पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का 80 वर्ष की आयु में निधन। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। आपको याद होगा कि म्यांमार में अगस्त 2017 में भड़की हिंसा से बचने के लिए लाखों रोहिंग्या लोग बांग्लादेश पहुंचे थे, जिससे एक नया रेफ्यूजीज यानी शरणार्थी संकट पैदा हो गया था। इस शरणार्थी संकट की वजह से एक पूरी पीढ़ी के वजूद और विकास पर भारी संकट के हालात बन गए हैं। करीब 7 लाख रोहिंग्या लोग म्यांमार से बचकर बांग्लादेश पहुंचे थे, इनमें मुख्य रूप से मुसलमान हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने आगाह करते हुए कहा है कि इन शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा और जीवन के काम आने वाले अन्य हुनर सीखने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होने का डर पैदा हो गया है। ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की सेना और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए हिंसक अभियान से बचने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद रायद अल हुसैन ने म्यांमार की सेना के उस हिंसक अभियान को सुनियोजित तरीके से नस्लीय सफाई का अभियान करार दिया था, यानी रोहिंग्या मुसलमानों को जानबूझकर हिंसा का शिकार बनाया गया था, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं की गई थीं और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यूनिसेफ का कहना है कि अगर करीब 5 लाख बच्चों की इस पीढ़ी को गरीबी, बेचारगी और हताशा निराशा से बचाना है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनके वजूद और भविष्य की परवाह करनी होगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि इन बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं बेहतर बनाई जाएं। यूनिसेफ के सीनियर कम्युनिकेशंस एडवाइजर साइमन इनग्रैम के अनुसार कुछ समझदार हो चुके बच्चों का तो ये कहना है कि उनके लिए शिक्षा तो खाने पीने के सामान से भी ज्यादा जरूरी है। उनकी नजर अब भविष्य पर है, वो अब ये सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, यानी उनकी जिंदगी में अगला पड़ाव क्या होगा। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है और यही पड़ाव है जब इन बच्चों और किशोरों में नई चिंता और डर घर करने लगे हैं। तंबाकू उत्पादों और पदार्थों के जानलेवा असर को कम करने के लिए असरदार नीतियां बनाने और तंबाकू के कारोबार में लगी कंपनियों के हस्तक्षेप को नकारने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को और ज्यादा एकजुटता दिखाने की जरूरत है। ये कहना है तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों में सक्रिय संस्था FCTC की अध्यक्ष डॉ वेरा लुइजा डी कोस्टा सिल्वा का। संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ विशेष बातचीत करते हुए उनका कहना था कि लाखों करोड़ों लोगों को बीमारियों और मौत से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिम्मत दिखाने की सख्त जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल यानी FCTC नामक संधि 15 वर्ष पहले वजूद में आई थी। ये एक ऐसी वैश्विक संधि है जो तंबाकू के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करने की हिमायत करती है। इसी के जरिए दुनिया भर में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों को कम करने, पर्यावरण को नुकसान से बचाने और गरीबी दूर करने में मदद मिल सकती है। इस संधि के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में अनुमान पेश किया गया है कि तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों की वजह से इस सदी के दौरान मौत का शिकार होने वाले लोगों की संख्या 1 अरब तक हो सकती है। इस समय के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का इस्तेमाल करने से हर वर्ष करीब 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा तंबाकू के इस्तेमाल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर वर्ष करीब 1 ट्रिलियन यानी $10 खरब का नुकसान होता है। ये नुकसान तंबाकू के सेवन से तरह तरह की बीमारियों के शिकार होने वाले लोगों के इलाज पर खर्च के रूप में होता है। साथ ही जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को उनके जरिए होने वाली आमदनी भी रुक जाती है। साथ ही तंबाकू के उत्पादन के लिए जंगलों को उजाड़ना और मिट्टी की पैदावार क्षमता कम होना भी पर्यावरण संबंधी नुकसान होते हैं। बहुत से लोग जब धूम्रपान करके सिगरेट वगैरह फेंकते हैं तो उससे भी पानी और मिट्टी को भारी नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों की प्रमुख रोज मैरी डी कार्लो ने कहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के रास्ते में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। रोजमैरी डी कार्लो ने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ताजा स्थिति की जानकारी देते हुए कही। उन्होंने परिषद के 15 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूतों से कहा कि मध्यपूर्व क्षेत्र में लगातार जारी हिंसा के हालात की वजह से वहां अदावतों और रक्त रंजित संघर्ष को रोकने के लिए एकजुट अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है। इसी संदेश के बीच उन्होंने उन इसराइलियों और फिलिस्तीनियों की सराहना भी की जो तनाव दूर करके आपसी समझदारी के जरिए एक दूसरे के लिए स्वीकार्यता बढ़ाने और एक साझा भविष्य बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। रोजमैरी डी कार्लो का कहना था,
They include volunteers who drive Palestinian patients to medical appointments in Israel, youth leaders finding creative ways to build a shared future amongst Jerusalem's communities, scientists working together to solve regional environmental challenges.
इन लोगों में ऐसे वॉलंटियर्स यानी मददगार भी शामिल हैं जो फिलिस्तीनी मरीजों को इलाज के लिए इसराइल में पहुंचाते हैं। इन लोगों में ऐसे युवा होनहार नेता भी शामिल हैं जो यरूशलम में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच एक साझा भविष्य बनाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजते हैं। ऐसे वैज्ञानिक भी इन लोगों में शामिल हैं जो क्षेत्र में मौजूद पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान तलाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन लोगों में वो फिलिस्तीनी और इसराइली महिलाएं भी शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अथक काम कर रही हैं। इस तरह के लोगों के ये अथक प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी को एकजुट होकर एक व्यापक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करना है, और वो लक्ष्य है फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इसराइली कब्जे को खत्म करना और दो राष्ट्रों की स्थापना के रूप में एक सर्वमान्य समाधान तलाश करना। ये समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अन्य समझौतों और संधियों के अनुरूप हो। इस समाधान में इसराइली और फिलिस्तीनी दोनों राष्ट्र और लोग शांति, सुरक्षा और सम्मान के साथ एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों की मुखिया रोजमैरी डी कार्लो के शब्द। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी सुलह सफाई को संभव बनाकर शांति का रास्ता निकालने के लिए मानवीय सहायता उपलब्ध कराना भी बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कोफी अन्नान को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। मौजूदा महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने कोफी अन्नान को एक ऐसी शख्सियत करार दिया जिन्होंने उन दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का काम किया जिनकी आवाज की अनदेखी कर दी जाती है या उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। कोफी अन्नान 1997 से लेकर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे थे। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने कोफी अन्नान के लिए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कोफी अन्नान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को सशक्त किया और हम सभी को उनका सहयोगी कहलाने के योग्य बनाने के साथ साथ हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराया। अंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि आज जबकि तमाम क्षेत्रों में राजनीतिक मतभेद और दायरे बढ़ रहे हैं और खत्म होने का नाम नहीं लेने वाले रक्त रंजित संघर्ष चल रहे हैं, तो हम सभी को शांति की संभावनाओं को साकार करने वाले कोफी अन्नान जैसे कूटनीतिक व्यक्ति की जरूरत है। कोफी अन्नान के अचानक निधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न केंद्रों पर शोक पुस्तिकाएं रखी गई हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी अपनी अपनी भावनाएं दर्ज कर सकें। कोफी अन्नान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर प्रस्तुत किए गए एक संदेश में कहा गया है कि कुछ दिन की बीमारी के बाद उनका शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से निधन हो गया। कोफी अन्नान के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र के तमाम ड्यूटी केंद्रों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज आधा झुकाया गया। अगर आप कोफी अन्नान के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारी अंग्रेजी वेबसाइट पर देख सकते हैं, पता है news.un.org। दुनिया भर से आए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का नाम है यूएन सिविल सोसाइटी फोरम और इस वर्ष का मुख्य विषय था दुनिया भर में मौजूद तमाम समस्याओं का हल निकालने के लिए मल्टीलेटरलिज्म की महत्ता को उजागर करना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय दान संस्था ऑक्सफैम की कार्यकारी निदेशक विनी बियन यिमा ने की। इस फोरम में संयुक्त राष्ट्र और सिविल सोसाइटी के बीच साझेदारी और तालमेल और ज्यादा बढ़ाने की संभावनाओं पर भी गौर किया गया। सिविल सोसाइटी यानी गैर सरकारी संगठनों एनजीओज के इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन यानी सार्वजनिक सूचना विभाग ने किया। अगर आप इस सिविल सोसाइटी फोरम के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल पर पा सकते हैं #UNNGO2018। तो संयुक्त राष्ट्र रेडियो से ये था साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।